कल शाम के सेशन में आपने उषा दीदी जी को थोड़ा बहुत जान ही लिया है, परंतु आज मैं उषा दीदी जी के परिचय से आप सभी को और भी अवगत कराना चाहती हूँ। उषा दीदी जी की उषक किरणें जो आज के सुप्रभात को और भी उजागर कर रही है। उषा दीदी जी आज हमारे बीच में अपने इन ईश्वरीय सेवाओं को 1980 से लेकर के मुंबई और हैदराबाद में सेवा करते हुए आज यहाँ पे राजस्थान में आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में हमारे सन्मुख आध्यात्मिक गतिविधियों को हमारे साथ उजागर करने के लिए उपस्थित है। विशेषतः इस संस्था के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स के लिए आपने आपका सर्वस्व लगाया और मुंबई हैदराबाद और भी सभी स्टेट्स में अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आपने सेल्फ मैनेजमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आत्म उन्नति के साथ साथ हम अपने सेल्फ को कैसे मैनेज करें इसके लिए आपने एक कोर्स भी तैयार किया और जिसकी एक किताब भी पब्लिश हो चुकी है। काफी समय हुआ है, आप उसमें बहुत ही अच्छी माहिर हो, आपके लिए क्या कहूं। उषा दीदी जी, आध्यात्मिक की ज्ञान की ज्योति आप जलाती हो और जला करके दिलों को रोशन करती हो, आत्मा को सुकून देती हो, हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करती हो, आत्मज्ञान और शांति की दिशा में आगे बढ़ने का साहस देती हो। उषा दीदी जी की वाणी में शांति और करुणा का संगम है। दिलों को छू लेने वाली उनकी आध्यात्मिक बातें आत्मा को शांति तो प्रदान करती है, जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य और संयम बनाए रखने की आप प्रेरणा देती हो। आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने का मार्ग सिखाती हो। तो आइए आज हम उषा दीदी जी से सुनते हैं, आत्म ज्योति को जगाकर परमात्मा जो कि सर्वोच्च सत्ता है उनसे जुड़ने का सही सरल मार्ग। उषा दीदी जी,
खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी परदा नशीनी का अंजाम है ढूंढता, आज भी तुझको इंसान है। ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान, तू बदनाम है। ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोजख को लाने की जहमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोजख को लाने की जहमत क्यों की। खेल कैसा गजब था गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज राजयोग का दूसरा सत्र में आप सभी पधारे हैं। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग माना गया क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ योग है, जहां आत्मा का कनेक्शन, जोड़ या मिलन पिता परमात्मा के साथ करना है, जिसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है और जिसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योग माना गया। दूसरा, जिसका वर्णन
स्वयं भगवान ने गीता के अंदर किया है और अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, इस राजयोग से मैं तुझे राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा अर्थात सर्वप्रथम इंद्रियों का राजा बनना, इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, और जिसने इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त किया है वो अपने मन के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर सकता है। और तब कहा जाता कि जिसने मन को जीता है उसने जगत को जीता बराबर है। मन जीते जगत जीत। तो राजाओं का राजा अर्थात इंद्रियों का राजा और मन का राजा। और ये विधि परमात्मा ने गीता में ही सिखाई है। लेकिन जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता है, हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे किसी ने उसको आत्मा कहा, रूह कहा, सोल कहा, शक्ति कहा, एनर्जी कहा, अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन है उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा, जिसके लिए कहा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य शक्ति है। जब शरीर में प्रवेश करती तो जीवात्मा कहलाती है और शरीर द्वारा कर्म करती है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया में अनेक मत मतांतर है। हमने एक बहुत सुंदर गीत अभी सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, ये संसार बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे। और शायद आज मनुष्य के मन में ये सारे सवाल है ईश्वर के प्रति, क्योंकि किसी के मन में भी ये क्लैरिटी नहीं है कि आखिर वो परमात्मा है कौन। कहां हम अपने मन को लगाएं? कुछ समय पहले एक बहन ने मैं आकर के मुझे सुनाया कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी मां से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान कैसे हैं। मां ने उसको कहा ये सारे भगवान हैं। उसने कहा भगवान तो एक होना चाहिए, और अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सब का हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो इन सब का हेड कौन है। अब वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, त्योहार होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज्ड हो जाता हूं, अपने मन को कहां एकाग्र करूं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर जाने के बाद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है, क्योंकि उसके मन के जो सवाल है उसका कोई जवाब दे नहीं पा रहा है। आज मैं आप सबसे पूछती हूं कि वो उस मां का खाली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मान लो कि आपके घर में आपका बच्चा है, आपका पोता आपसे पूछे कि सभी भगवानों का हेड कौन है, तो क्या आपके पास उसका जवाब है? और जब जवाब नहीं होता है तो बड़े क्या कहते हैं, बड़ा होगा ना समझ जाएगा, अभी छोटा है। तो आखिर भी वो सत्य क्या है? जब ईश्वर को कहा जाता है ईश्वर एक है, वो सत्य है, सत्य एक ही होता है। दस बातें हमारे सामने हो और हम कहे दसों ही सत्य है, इम्पॉसिबल। एक बार हमने कार्टून देखा कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था वो सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, कण कण में भगवान है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता हैं सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य किसको कहा जाए इन सब में? क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, व्हाट इज ट्रुथ? हाँ, कुछ और है, माना इसमें से कुछ भी नहीं है, और कोई, आपका विवेक? सचमुच सत्य कुछ और है। ये सारे ओपिनियंस बताते हैं कि सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे, व्हाट इज ट्रूथ? इसलिए कहा कि अभी तक हमने सत्य को समझा ही नहीं है। ये नहीं कि यहां आए हैं ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया क्या उसको मानना है, नहीं, उसको भी नहीं मानना है। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और ये कसौटी है पांच बातें। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन। जब परमात्मा एक है तो सबकी मान्यता भी तो एक होनी चाहिए। तो जिसको सारा संसार ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम के ऊपर कुछ नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। परमात्मा के लिए कहा गया है वो अजन्मा है, अकाल मूरत, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। तो न जन्म है न मृत्यु है। जिसने जन्म लिया उसने देह धारण किया, और देह है तो देह के संबंध है। जब परमात्मा को जन्म ही नहीं है तो न देह है न देह के संबंध है, अव्यक्त, व्यक्त स्वरूप से परे। तीसरा, जिसने देह धारण किया उसने कर्म किया, और कर्म किया तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। जबकि ईश्वर के लिए कहा जाता है वो अकर्ता भोगता है, न कर्म करता है न भोगता है फल। अच्छा, जिसने कर्म किया वो तो या तो वो कर्म पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, वो उससे भी परे हैं। अकर्ता भोगता है तो कर्म के चक्र से भी वो परे हैं। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता है, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, वो उससे भी परे हैं। इसलिए उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। उसका एक नाम हरि है, हरि माना जो सबके दुख हरने वाला और सुख देने वाला। वो उस चक्र में नहीं आता है लेकिन देता जरूर है। चौथी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों को जानने वाला, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला, और त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव उसको कहा। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज, जिसके लिए कहा गया सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। उसको कहेंगे परमेश्वर इन्फिनिट, जिसका कोई एंड नहीं है। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब अगर एक एक मत को उठाकर इस पर कसकर देखे, सत्य है। जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? नहीं। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो अगर परमात्मा चित्रकार है और ये प्रकृति उसका चित्र है, तो चित्रकार और चित्र अलग है, एक नहीं है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। आपका विवेक क्या कहते हैं, प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? हाँ, रचना है कहना सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना यह ज्ञान था। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो सत्य क्या है, हम ही परमेश्वर है या हम उस परमेश्वर के संतान है? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है, तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। कई बार कई मनुष्य क्या कहते कि नहीं, अगर जीवन में हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है कि मैंने पुरुषार्थ किया तो मैं प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य कोई भी डिग्री को प्राप्त कर सकता है अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? नहीं, वो कोई डिग्री नहीं है जो मैंने प्राप्त कर ली। वो अपने पिता के सामने बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि अभी वो खुद पिता बन गया, खुद का पिता बन गया। और दूसरा, मनुष्य ने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे ये पुण्यात्मा है, किसी ने कोई महान कार्य किया तो कहेंगे ये महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे ये तो धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे ये देवात्मा है। तो देवात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये बहुवचन नहीं आता है, सिंगल ही आता है परमात्मा। और ये सब भी आत्माएं हैं, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। तो परमात्मा कौन? कई बार कई लोग क्या कहते हैं, एक बड़ा परमात्मा था, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के हम इस संसार में अंश होकर के आए, अंत में जाकर के उसी में विलीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। ये कहां तक सत्य है? सबसे पहली बात, मिसाल देते, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, इसी तरह परमात्मा से हम नीचे आए, उसके अंश होकर के और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाना, ये कहां तक सत्य है? पहली बात तो सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है, तत्व है, तत्व तत्व में मिल सकता है, मैटर मैटर में मिल सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, शक्ति है, जिसके लिए कहा गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता। अगर वो विलीन हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। जबकि शास्त्रों में कहा, गीता में कहा दूसरे अध्याय में कि न अग्नि उसको जला सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है, न तलवार उसको काट सकती है। तो फिर वो विलीन कैसे हो जाएगी? मनुष्य एग्जाम्पल देवे तो बराबर का तो देवे। सागर से बुदबुदा निकला वो तत्व है और आत्मा शक्ति है, दोनों की कंपैरिजन ही नहीं है। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, वो किसी में मिल नहीं सकती है, ना उसको पैदा किया जा सकता है। वो है ही है, अजर अमर अविनाशी शक्ति है ही है। तब मनुष्य क्या कहते हैं, नहीं जैसे पुत्र पिता का अंश है वैसे हम भी परमात्मा के अंश है। अगेन, पुत्र पिता का अंश है, ये है प्रैक्टिकल। अगेन इट इज मैटर, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर वो उस पिता का अंश है, लेकिन आत्मा तत्व नहीं है। इसीलिए सत्य क्या है, हम परमात्मा के अंश है कहना सत्य है या वंश है कहना सत्य है, संतान है कहना सत्य है या उसका टुकड़ा है कहना सत्य है, क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य है, वंश है हम, अंश नहीं है। नहीं तो सब एक जैसे होने चाहिए, आज सब अलग अलग है, भिन्न है। अगर एक ही से टुकड़े हुए हैं तो प्रॉपर्टी तो एक जैसी होनी चाहिए। आज कोई आत्मा देखो बहुत क्रोधित है, कोई आत्मा देखो कैसी है, कोई आत्मा देखो पापात्मा है, कोई आत्मा देखो पुण्यात्मा दिव्य आत्मा है। प्रॉपर्टी कहाँ एक जैसी, अगर अंश होते तो प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए सबकी, सबकी क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, कहाँ है? तो आत्मा सो परमात्मा कहना ये अज्ञान है। क्लियर हो गई? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अज्ञानता के कारण हम हमेशा दो दो बातें करते रहे। एक तरफ कहा ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी ओर कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर। अब सत्य क्या है, ब्रह्म ही ईश्वर है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य, तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है। इट वॉज अगेन आउट ऑफ इग्नोरेंस जो हमने कह दिया, सत्य तो नहीं है। चौथी बात, जब हम कहते कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, ये कहां तक सत्य है? क्या भगवान कण कण में, माना कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? है, हो ही नहीं सकता है। ऊंचे ते ऊंची हस्ती, आज हमें कोई कह दे कि फलाना जानवर जैसा है तो भी हमें इंसल्टिंग महसूस होता है, और ईश्वर को हम कहे कि कूड़े कचरे गंद गटर सब में भगवान है, कण कण में है, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? अपमान है। तब मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, परमात्मा जो है ना हर एक इंसान के अंदर है, उसके दिल में बैठा है, हर एक के अंदर बैठा है, तभी तो वो सब कुछ जानता है। अरे उसको अंदर बैठने की जरूरत है क्या जानने के लिए? यार जान करके करना क्या है उसको? हर एक आत्मा जो कर्म करते हैं, कर्म न्याय करता है, कर्म का फल उसको मिलता ही है, कर्म न्याय करता है। भगवान को जानने की जरूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात कि ये भावनात्मक सत्य है। आज अगर मान लो कि आपका बच्चा विदेश जाता है और विदेश से वो फोन करता है और फोन करके अपनी मां से पूछता है कि मां तुम मुझे याद करती हो, या पिताजी आप मुझे याद करते हो, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? अरे तुझे भूलते ही कब है, तू तो हमारे दिल में रहता है। यही कहते हैं ना, तू तो हमारे दिल में रहता है, तुझे भूलते ही कब है। अब दिल में रहता है या विदेश में रहता है? ये दिल में रहता है, कौन रहता है दिल में? याद रहती है, उसकी याद रहती है। वो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है, दिल के अंदर। ठीक इसी तरह हम जब कहते हैं भगवान हम सबके दिलों में रहता है, मतलब वो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है, उसकी याद दिल में समाई हुई है। ये सत्य है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन फिजिकली मान लेना कि हर एक में परमात्मा है, ये माइक में भी परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में भी परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये सोफा में भी परमात्मा है इसलिए बैठ के इसकी पूजा, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। हमें अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देना है, उस भाव को समझ करके उस भाव को स्वीकार करना है। अगर हर एक में परमात्मा बैठा होता और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर कर्म आत्मा का है तो परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या उसके पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? और अगर नहीं रोक सकता है तो अंदर बैठने का मतलब क्या है? मतलब ही नहीं है। आज घर में बच्चे होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हो गया और मारपीट करने लगे और आप सामने बैठे हो, आप देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। एक शारीरिक माता पिता भी अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है तो वो तो परमात्मा है। दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, क्या वो अपने बच्चों को लड़ते हुए देख सकेगा? लेकिन माता पिता अगर बाहर गए हो तो बच्चे खूब लड़ेंगे, खूब मारपीट करेंगे, लहूलुहान भी कभी कभी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता घर में नहीं थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। इसलिए ठीक आज दुनिया के अंदर जो हालत हो रही है उससे देख करके तो यही आता है भगवान है, कण कण में है, ये सब में है? नहीं है। अगर होता तो वो भी अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता था। तभी तो उसने गीता में ये वायदा दिया 4th अध्याय में, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। ये वायदा है भगवान उवाच। अगर वो आता है, मना नहीं है तभी तो आएगा। अगर यही है तो कौन आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते इतना धर्म कैसे? यही सवाल है। आज कोई हमें कोई बात बताता है या पूछता है और हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? यही कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने? अनजाने पन में भी हमारे मुख से यही निकला, ऊपर वाला जाने। उसको कहा ही ऊपर वाला, नीचे वाला तो कहा ही नहीं उसको। तो जो सर्वव्यापी है वो कौन है? कौन है? शैतान है। शैतान सर्वव्यापी है, तभी तो ये शैतानी कर्म मनुष्य के हो रहे हैं। वो उसकी बुद्धि को शैतानी बना रहा है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, शैतान हरेक के अंदर बैठा है, जो गलत काम करवा रहा है, जो बुद्धि को घुमा रहा है। तो सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है, शैतान है, जो शैतान कहता है मैं ईश्वर हूं। शैतान का काम ही क्या था? मनुष्य को कन्विंस करना। शास्त्रों में कहानी आती है ना कि असुर क्या कहते थे, हम ही भगवान है, भगवान और कोई है ही नहीं, हम ही भगवान है। तो ये शैतान कह रहा है, ईश्वर ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। उसने तो यही कहा अधर्म के समय पर मैं आऊंगा, ये उसका वायदा है। तो सत्य क्या है, आपका विवेक क्या कहता है? ईश्वर सर्वव्यापी है, ये एक भावनात्मक सत्य है जिसको हम भी स्वीकार करते हैं कि भाई हमारे दिल में उसकी याद समाई हुई है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात? है कोई प्रश्न? पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, तूफान है। और अगर शांत प्रकृति दिखाना है, हवा चल ही नहीं रही है, एकदम शांत है, तो पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है, बादलों को भी, पहाड़ियों को भी, पेड़ पौधे सबको पानी के अंदर जैसे पूरा प्रतिबिंब आ जाता। कहते कि कितनी शांत प्रकृति है, जैसे हवा चल ही नहीं रही है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो क्या स्वयं ईश्वर नाम रूप आकार बिना हो सकता है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? उसका भी नाम रूप आकार है। कौन सा? जिस तरह एक मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज। इसलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में ये ज्योत है। तो आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो उसका पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है, इसलिए उसको निराकार कहा। जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है लेकिन उसका अपना आकार तो है। जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी और कहा ज्योतिर्लिंगम, ये ज्योति की आकृति है। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए ये आकृति दे दी। लिंग माना आकृति। ग्रामर में इसीलिए कुछ शब्दों को कहते स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति। तो ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है, जिसको नाम दिया भारतवासियों ने सदाशिव। सदाशिव, शिव माना जो सदा कल्याण करने वाले, और इसलिए भारत के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ, अमरनाथ, केदारनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। साउथ में चले जाओ, रामेश्वरम के रूप में उसकी पूजा होती है। तो ईस्ट में चले जाओ, काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। तो वेस्ट में चले जाओ, सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर जाओ, नेपाल में तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। और इसीलिए उनको कहा गया देवों का भी देव महादेव। सभी देवी देवताओं का भी आराध्य कौन था? श्री कृष्ण का आराध्य कौन था? शिव। श्री राम के आराध्य कौन थे? शिव। तभी तो शिव की पूजा किया उन्होंने लंका में युद्ध करने से पहले। श्री कृष्ण ने वृंदावन के अंदर गोपेश्वरम मंदिर है आज भी, वहां शिव की पूजा की, ये गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की। कुरुक्षेत्र चले जाओ, स्थानेश्वर मिलेगा कि जहां पर श्री कृष्ण ने खुद भी महाभारत युद्ध के पहले शिव की पूजा की, पांडवों से भी कराई। अगर खुद परमात्मा होते तो अपनी पूजा कराते नहीं, शिव की पूजा कराई। तभी तो कहा श्री कृष्ण के भी आराध्य कौन? शिव। नवरात्र का ये पावन दिन चल रहे हैं, भारत के अंदर 51 शक्तिपीठ है। ये शक्तियां कौन थी? ये देवियां कौन थी? तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गए, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। सबको कन्या रूप में दिखाया है, गृहस्थ रूप में नहीं दिखाया है, कन्या रूप में दिखाया है। अंबा हो, दुर्गा हो, शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, चंद्रघंटा हो, सब कौन है? शिव शक्तियां हैं जिनकी पूजा हम कर रहे हैं। तो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, उसको कहा महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं अज्ञानता के कारण। कौन सी गलती? जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम अलग है शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है, आइडेंटिटी अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय होता है, महाविनाश होता है। तो एक भोलेनाथ, एक प्रलयनाथ है, नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, एक कैसे हो सकता है? भारत में जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता है। किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? अगर एक है तो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? कभी किसी ने कहा ओम नमः शंकराय, ओम नमः शिवाय? भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा? क्यों नहीं कहते एक है तो कहना चाहिए? ऐसे कई डिफरेंसेस मैं आपको बता सकती हूं। शिव के ऊपर त्रिपुंड है ना, जो आदि मध्य अंत को जानता है, और शंकर को ध्यान मुद्रा में दिखाया है। किसका ध्यान कर रहा है? उसका आराध्य कौन था? कैलाश पर्वत पर बैठकर उसने किसका ध्यान किया? कैलाश का। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति का है। तो शंकर ने भी जिसका ध्यान किया, अब उसको ध्यान करने की क्या जरूरत थी? इसलिए ध्यान किया क्योंकि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी शक्ति अपने अंदर हो तब जाकर के आंख खोलते महाविनाश हो सकता है। इसलिए इतने सालों उसने ध्यान किया, उस शक्ति को हासिल किया और तब ये कार्य कर सके। अमरनाथ पर जाएंगे तो वहां पर पंडित लोग सुनाते हैं अमरनाथ का महत्व, कि यहां शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। ये नहीं कहा अपनी कथा सुनाई, अमरनाथ की कथा सुनाई। माना अमरनाथ और शंकर अलग है। शंकर को पूरा गृहस्थ दिखाया है, मां पार्वती है, दो बच्चे हैं गणेश और कार्तिकी, और सब मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। ऐसे चित्र भी आपने देखे होंगे, पूरा परिवार है। और शिव सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ है। इसलिए जितने भी शिव के मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंगम आप देखोगे या और भी, भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। और जितने भी मंदिर है उनके मंदिरों के नाम की एंडिंग या नाथ या ईश्वर में होती है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सारे शिव के मंदिर है। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है वो एक ही परमेश्वर है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए सर्व धर्म मान्य होना चाहिए, तो भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन मक्का जब जाओ तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, जिसके पीछे कहानी है कि मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उसने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफी मतभेद, लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब कहा जाता है कि ऊपर से आकाशवाणी हुई और ये पवित्र पत्थर ऊपर से गिरा था कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और इसलिए मोहम्मद पैगंबर साहब ने उसकी स्थापना मक्का के अंदर की थी अपने हाथों से। और तब से लेकर के मान्यता हुई कि ये पवित्र पत्थर का दर्शन जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, तब जीवन सफल हुआ। इसलिए उनकी हर साल हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। वहां एक पिल्लर है जिसको वो शैतान कहते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर ये काबा के पवित्र पत्थर को आके चूमते हैं, 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश। जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जीसस ने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड, उसने यही कहा हमेशा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसीलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं, जीसस की भी नहीं है, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का ही सिंबल मिलेगा। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि वेटिकन लिखो, वेटिकन के अंदर हु इज गॉड, तो बताएगा वो लाइट का सिंबल। जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा इस्लाम धर्म में, और हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने बड़े सुंदर शब्दों में, स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार निर्वैर अजोनी, जो किसी योनियों में नहीं आता है, अकाल मूरत सत्य नाम जिसका कहा, बहुत सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी, यही कहा, एक नूर एक नूर। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था, तो यही कहेंगे सिद्ध शिला का ध्यान कर रहे हैं। सिद्ध शिला माना जो सर्वश्रेष्ठ निराकार परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। और आगे जाए महात्मा बुद्ध को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने भी कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन खुद भी ध्यान मुद्रा में है। आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहा जाता करनी का पवित्र पत्थर, और उसके सामने बैठकर वो ध्यान करते हैं। कहते जिसके ध्यान से हमारा मन शांत हो जाता है, इसलिए उसको नाम दिया चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता। और आगे जाए पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे, जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य कौन है, एक ही तो है। नाम भले अलग अलग है, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक, और उसी को याद करते थे वो। उसने कभी किसी को ये नहीं कहा आप मेरी पूजा करो। तो हम लोग रास्ता भटके कहां से, जब सबने उसकी ओर इशारा किया, स्वयं श्री राम उसकी पूजा कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, मेरे आराध्य है तो आप सबके भी आराध्य यही है। हमने श्री राम की पूजा करना चालू कर दिया। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, हमने उसकी पूजा करना चालू कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसका ध्यान करो, हम लोग रास्ता भटके कहां से फिर। और इसलिए हमारी कोई प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकी, पहुंची ही नहीं। इसलिए आज मनुष्य इतना दुखी अशांत है, और कभी कह भी देता है फ्रस्ट्रेशन में आकर, भगवान भी हमारी कोई बात सुनता नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है। तो सर्वोच्च शक्ति सर्वधर्म मान्य वही है, सर्वोच्च शक्ति भी वही है। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है। इसलिए शिव के कोई माता पिता नहीं है, जो स्वयंभू है। और वो स्वयंभू ने तीन मूर्तियों को अपने कार्य के लिए रचा, इसलिए परमात्मा को कहा जाता करण करावनहार। और ये त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके माध्यम से कार्य कराते हैं। करण करावनहार वो है, कराता इनके द्वारा है, इसलिए ये तीनों का भी जन्म नहीं दिखाया। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म नहीं दिखाया, तीनों की उत्पत्ति है। शिव स्वयंभू है, इनकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति और स्वयंभू में अंतर है। ये तीनों की उत्पत्ति कहां से हुई? कहा प्रकाश से हुई, प्रकाश से हुई, लाइट से, ओम से। कहीं ओम से कहते हैं, ओम से प्रकट हुए, और कहीं कहते हैं लाइट से उत्पत्ति हुई। सबसे परे शिव का न जन्म है न मृत्यु है, इसीलिए शिव को महाकालेश्वर भी कहा जाता। कालों का भी महाकाल कौन है? शिव है। तो अजन्मा अकाल मूरत, उसको अकाल मूरत भी कहा, काल जिसको नहीं खा सकता है। जब जन्म ही नहीं है तो देह भी नहीं है, देह नहीं है तो देह के संबंध भी नहीं है। अव्यक्त, अकर्ता भोक्ता, क्योंकि खुद करते नहीं है तो फल भोगते भी नहीं है। न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, तो सभी चक्रों से जो पर है। लेकिन पर होते हुए भी सब कुछ जानता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाते हैं, जो आदि मध्य अंत को जानता है। एक एक व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है वो जानने की उसको जरूरत नहीं है। सृष्टि के लेवल पर आदि मध्य अंत क्या है वो जानते हैं। बीच में एक आंख होती है, वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात त्रिनेत्री मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले हैं। त्रिनेत्री है और त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है त्रिदेव। इसलिए उसके ऊपर तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ाते हैं, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। अर्थात ये त्रिमूर्ति है, तो तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान शिवलिंग का जो स्वरूप है उसको ही कहा जाता ऊर्जा का स्वरूप। ऊर्जा जहां से प्राप्त होती है, इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगम में भी जहां भी आप जाएंगे वहां शिवलिंग के लिए के कारण उस स्थान को भी ऊर्जा का स्थान कहा गया है। यहां आप आए दो दिन से, ऊर्जा महसूस होती, ऊर्जा का स्थान है। क्यों? क्योंकि इतने हजारों लोग जो आते हैं उसका ध्यान करते हैं, तो वो ऊर्जा का स्थान हो जाता है। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगम भी सारे ऊर्जा के स्थान है, कांस्टेंट जहां से ऊर्जा प्रकट होती है। इसलिए जो न्यूक्लियर का ये रहता है उसको भी ऐसा ही स्थान, उसका जो स्वरूप है वो भी शिवलिंग का ही दिखाते हैं। ब्रह्मांड का स्वरूप, प्लेनेटोरियम देखो तो वो भी ऐसा ही आपको गोलाकार में मिलेगा, जितने भी प्लेनेटोरियम है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर भी वो ऊर्जा है। तो पांचों ही बातें उस एक के साथ लगती है, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। तो यह था संपूर्ण परमात्मा का परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो 5 बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये 5 बातें देखी, जिसका नाम है सदाशिव, गॉड अल्लाह ईश्वर प्रभु मालिक जो भी कहो, देवों के देव। उसकी आइडेंटिटी निराकार ज्योति स्वरूप, ज्योति पुंज, नूर प्रकाश लाइट, अखंड ज्योति जो भी कहो। उसके क्वालिफिकेशन 5 बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, ये उसके क्वालिफिकेशन है। उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। और उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानी जब जब इस संसार में होती है तब वो स्वयंभू प्रकट होता है, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कराने, किसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश, करण करावनहार वो है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो अगर आपके बच्चे आपके पोते आपसे पूछे ये सब भगवानों का हेड कौन है तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उनको ताकि वो भटक न जाए रास्ता, मन की एकाग्रता के लिए मेडिटेशन करना, उस ध्यान करना। हमारी आज तक ये शिकायत थी ध्यान नहीं लगता है, परमात्मा में ध्यान नहीं लगता है, भटक जाता है, मन बड़ा दुष्ट है पापी है इसलिए भटक जाता है। नहीं, मन का दोष नहीं है, उसको पता ही नहीं था कहाँ लगना है। अब तो पता चला, अब तो लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, जब लगाएंगे उस ज्योति स्वरूप परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो क्या मांगेंगे, मांगना नहीं है, अपने मन को जोड़ो, तार को जोड़ो। जैसे बाहर खड़े रहो सूर्य से, मांगते नहीं है कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, आप खड़े रहो उसके कांटेक्ट में आओ, गर्माइश मिलने लगेगी, रोम रोम में गर्माइश भर जाएगी। माउंट पर जाकर आप पहाड़ों से ये नहीं कहेंगे तेरी शीतल हवा मुझे दे, कांटेक्ट में आओ अपने आप शीतलता रोम रोम में समा जाएगी। ऐसे हमें भी ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, मन के तार को जोड़ना है, मन बुद्धि ये 2 पिन है, ये 2 पिन को जोड़ना है। और जैसे ही उसके ध्यान में अपने मन को लगाएंगे उसकी ऊर्जा अपने आप आने लगती है, महसूस होने लगती है, शक्तियां प्राप्त होने लगती है और आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप भरने लगता है। कांटेक्ट करके तो देखो, ठीक है, और कांटेक्ट करने के लिए उसका फोन नंबर देती हूं आपको, ईश्वर को कांटेक्ट करने का फोन नंबर तो चाहिए ना, वो मोबाइल से नहीं होगा, लेकिन 000 ये 3 0 जो है ना, ये उसका कांटेक्ट नंबर है। भावार्थ, भावार्थ, पहला 0 मैं आत्मा बिंदी, पहले स्वयं को आत्मनिश्चय करो। दूसरा परमात्मा भी बिंदी, ज्योति पुंज है तो 0 हो गया ना, पहले मैं आत्मा बिंदी ज्योति बिंदु हूं, वो भी ज्योति बिंदु है। और दिमाग के अंदर जितने भी व्यर्थ के विचार चलते उन सबको लगाओ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, बिंदु लगाओ। जब तक बिंदु नहीं लगेगा कांटेक्ट नहीं होगा, लाइन एंगेज रहेगी तो कांटेक्ट नहीं लगेगा। तो कांटेक्ट करने के लिए सब बातों को लगाओ बिंदु, तो ये 3 बिंदु लगेगा तो कांटेक्ट इजी हो जाएगा, ठीक है। और दिन में अगर एंगेज आ जाए तो सुबह सुबह लगाना चाहिए अमृत वेले, इसीलिए यहाँ अमृत वेले कांटेक्ट किया जाता है। अमृत वेले सारी लाइनें फ्री मिलेगी आपको, सहज कांटेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन बिंदु उसका फोन नंबर है, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और बाकी सब बातों को लगाओ बिंदु, ठीक है। तो चले ध्यान करें, दो मिनट परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे, बहुत सुंदर गीत बजेगा परमात्मा की याद का।